Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये श्रामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ जिन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्यस्पतिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए थोड़ा भगवान की स्मरण करके चले। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राघव राजा राम जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजले प्यारे राधे श्याम भजले प्यारे सीताराम भजले प्यारे राधे श्याम भजले प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रेम से बोली राजा राम चंद्र महाराज की। चलो जी, हम लोगों के जीवन में भगवान राजा राम का निवास हो। तो आप श्रवण कर रहे थे कठोपनिषद की कथा ना, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। कठोपनिषद में एक प्रसंग है, श्रवणयापि बहुभिर् यो न लभ्य। आत्मज्ञान प्रारंभ करने के पहले यमाचार्यजी नचकेता को कहते हैं कि हे नचकेता, जिस चीज को सुनने के लिए तुम लालायित हो, बार बार प्रार्थना कर रहे हो, यह क्या चीज है? तो कहा श्रवणयापि बहुभिर् यो न लभ्य। सुनने को भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। दुनिया की जो कथा है, चर्चा है, वो आप नहीं भी सुनना चाहे तो भी दुनिया वाले सुनाएंगे, परंतु आत्मज्ञान की चर्चा बड़े भाग्य से उपलब्ध होती है। देखो, भगवान शंकर जैसे वक्ता, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों गुरु का नाम है शुक्राचार्य, ये तो पक्की बात। परंतु जो भगवान शंकर हैं, शुक्राचार्य के भी गुरु हैं और बृहस्पति के भी गुरु हैं, इसलिए कहते हैं भगवान शंकर को गुरुणाम गुरु शंकरो। वे भगवान शंकर जैसे वक्ता क्या सुना रहे? आत्मक कथा। अश्रोता कितने हैं पता है? एक। वो भी कौन पता है? माताजी। माताजी मतलब उनके घरवाली। आप आज की भाषा में बोलेंगे ना घरवाली, हम लोगों के लिए तो माताजी हैं, पर भगवान शंकर की दृष्टि से घरवाली है ना, क्योंकि ये जो आत्मक कथा है, अमर कथा, यह अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान की कृपा होती है और जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज का उदय होता है, तभी जाकर यह कथा सुनने को मिलती है। और आगे कहा कि वक्ता भी दुर्लभ होता है, कुशलानुशिष्ट, कुशल आचार्य से अनुशिष्ट होकर जो वक्ता है वह सुनाए, तभी जाकर कल्याण होता है। तो आप लोग कितने भाग्यवान हैं सोचो। मुझे तो कई बार मन की बात कर रहा हूं, वाणी से नहीं, मन ही मन कई बार याद आती है कि देखो, प्रेमपुरी जी महाराज की अश्वनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय अखंडान जी महाराज की कितनी बड़ी अनुग्रह शक्ति, जिस अनुग्रह शक्ति, अनुग्रह मतलब कृपा, कृपा शक्ति के प्रभाव से आज मुंबई जैसे स्थान पर, जिसको लोग बोलते भोग भूमि है ना, मोहमय नगरी बोलते, वहां पर आप वेदांत का श्रवण कर रहे, असीम अनुकंपा है। बंबई से अन्यत्र भी मैं जाता हूं, मुजफ्फरनगर सहारनपुर, तो वहां ऐसी कथा नहीं होती। वहां कथा कर लोग बोले महाराज जी राम कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए, क्या वेदांत सुना रहे, ऊपर ऊपर जा रहा। स्वाध्याय तो वहां होता ही नहीं, कथा स्वाध्याय प्रवचन अलग चीज है, कथा अलग चीज है। आपको प्रमाणिकता रूप से देखनी हो तो तैतरीय उपनिषद में, जहां पर कि बार बार आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं, जब शिष्य गुरु कुल में ब्रह्म विद्या पढ़ लेता है, जब जाने लगता है, तो पढ़ने के बाद में जाने के पूर्व एक संस्कार होता है, उसका नाम है समावर्तन संस्कार। आज भी होता है ना विद्यालय कॉलेज में, वो स्नातकोत्तर बोलते ना, तो समावर्तन संस्कार बोलते हैं वैदिक भाषा में। समावर्तन संस्कार के समय आचार्य बार बार शिष्यों को उपदेश करते हैं, देखो शिष्यों, देखो पुत्रों, स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना, सब कुछ करना, मतलब कि धन अर्जन करो, प्रजा प्रजातिश्च कर्तव्यम, सब कुछ करो, परंतु स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना। उसी प्रसंग में भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी इसका अर्थ लिखते हैं कि स्वाध्याय क्या, प्रवचन क्या, कथा क्या। स्वाध्याय शब्द का शंकर भाष्य के तैतरीय उपनिषद के इस मंत्र में अर्थ किया है, स्वाध्यायो नाम अध्ययनम, गुरु मुख के उच्चारण पूर्वक पहले गुरु जी ने उच्चारण किया, फिर आपने उच्चारण किया, जैसे यहां पर होता है ना। और अर्थ का बोध है, इसका नाम है स्वाध्याय। प्रवचन क्या है? तुम्हारा लिखा प्रवचनों नाम अध्यापनम। प्रवचन बोलते अध्यापन को, पढ़ाने को। मतलब ग्रंथ में जो मंत्र है, ब्राह्मण भाग है, उसको स्पष्टीकरण करना, रहस्य को समझाना, इसको बोलते हैं प्रवचन। भगवान शंकराचार्य के व्याख्यान के अनुसार स्वाध्याय मतलब ग्रंथ का अध्ययन, प्रवचन मतलब अध्यापन। और कथा क्या है? तो कथा शब्द का अर्थ खंडन खंडकार बड़े विस्तार से लिखते, कथा नाम नाना वक्त्रिको संचय कथा। नाना प्रकार के लोगों का जो कथन है ना, जैसे आख्यायिका है, उपाख्यायिका है, कहानियां हैं, राजा रानी की इतिहास का वृतांत है, इसको बोलते हैं कथा। कथा में स्वाध्याय प्रवचन की बातें कम होती, परंतु इधर उधर की ऐतिहासिक उसमें दृष्टांत ज्यादा होते हैं। तो स्वाध्याय प्रवचन जीवन में उपलब्ध हो जाए तो समझना कि हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य है। जिस प्रकार नदी में बहुत ज्यादा पानी, गंदला पानी देखकर अनुमान करते हैं कि पहाड़ पर वर्षा हुई होगी, वर्षा नहीं होती तो यहां पर ऐसा गंदला धूमिल पानी नदी में नहीं आता। ऐसे जीवन में जब स्वाध्याय प्रवचन सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये जो श्रवणयापि बहुभिः लभ्य, और नचिकेता को अंत में कहते हैं आचार्यमाचार्य कि त्वादृङ् नो नचिकेता भूयान पृष्टा। त्वादृङ् मतलब तुम्हारे समान है, हे नचिकेता पूछने वाला जिज्ञासु मिले। आजकल जिज्ञासु मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? भगवान महाराज जी लड़के की नौकरी कब लगेगी? ऐसा नहीं, लड़के की शादी कब होगी बोलते ना, कारोबार धंधा किस प्रकार ठीक से चलेगा, ऐसा नहीं पूछने वाला। त्वादृङ् नो नचिकेता भूयान पृष्टा, तुम्हारे समान आत्मज्ञान को पूछने वाला हो। आत्मज्ञान मतलब संसार सागर से हमारा मोक्ष कैसे होगा, इस प्रकार के प्रश्न करने वाला। भूयान मतलब बार बार मुझे पूछने वाले मिले, इस प्रकार से यमाचार्य कहते हैं। और यमाचार्य कौन है पता है ना? जिनका नाम सुनते सब घबरा जाते, सबकी हवा उड़ जाती, उसको बोलते यमाचार्य। देखो एक प्रसंग याद आ गया कि जब मन पर बोलते हैं ना तो हम सोच के जो आते हैं कभी बोल नहीं सकते, जैसा प्रसंग निकलता वैसे ही बोलना पड़ता है। सोचा था गीता बोलेंगे पर प्रसंग निकल गया कुछ और, कठोपनिषद का। तो देखो महाशिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि के दिन सारे देवी देवता काशी विश्वनाथ भगवान शंकर से मिलने जाते हैं। जैसे आज भी किसी के घर में कोई उत्सव मना रहे हो या किसी लड़के का मान लो ब्याह शादी हो तो बड़े से बड़े आदमी मिलने जाते हैं ना, भाई चलो हम नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। ऐसे सारी देवी देवता भगवान शंकर से मिलने महाशिवरात्रि को आते हैं। तो भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ पधारे, यमाचार्य भी पधारे अपनी पत्नी के साथ, सभी आए। तो वहां भी ना ऐसी कतार लगती, ऐसा नहीं समझो कि सीधे चले जाओ। तो यमराज ने देखा कि हमारे पहले भगवान विष्णु पहुंचे हैं, लक्ष्मी जी के साथ कुछ संवाद कर रहे हैं, तो सोचे कि बीच में जाना ठीक नहीं। वैसे भी नियम है दो के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। महाकवि कालिदास ने उसको मूर्खत्व का लक्षण कहा है। महाराज भोज एक बार निवास में गए तो रानी ने कहा ये मूर्ख राजा बिराजी अपने सहेली के सामने, कोई रानी पति परमेश्वर को बोले आइए मूर्ख श्रीमान राजा जी पधारिए तो कैसा लगेगा, वहीं से लौट गए। सोचने लगे कि हमने कौन सी भूल किया कि हमारी पत्नी इतनी साध्वी पतिव्रता ने सहेली के सामने बोल दिया, मूर्ख राजा। सोच पे पड़ गए, पर इसका समाधान नहीं हुआ। प्रातः काल सभा में आए और जो भी आता ना पंडित, बोल आओ मूर्ख पंडित राज विराजो, आसन ग्रहण करो, मंच की शोभा बढ़ाओ। सब एक दूसरे को देख रहे कि राजा को क्या हुआ, सबके संबोधन में मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे। जब महाकवि कालिदास आए ना, उनको भी ऐसे ही बोले, आओ कविराज मूर्ख कालिदास जी विराजो। तुरंत बोल पड़े, मैं मूर्ख कैसे? वह मूर्ख का लक्षण किया, लक्षण क्या किया? गच्छन न खादा मी, चलते मैं खाता नहीं। आजकल वो परंपरा बन गई ना, शौक, गच्छन न खादा मी, चलता हुआ खाता नहीं, जल पे न हंसा मी। चार से बात कर रहे हैं ना, तो बीच में मैं हंसता नहीं। बहुत लक्षण किया और अंत में कहा कि द्वयोर मध्य तृतीयो न भवामी, कथम किम कारण राजन भवामी मूर्ख, मैं दो के बीच में तीसरा नहीं होता। फिर आपने कैसे मूर्ख कर दिया मुझे, मैं मूर्ख कैसे? तो राजा ने कहा कि माफ करना, मैं मूर्ख की परिभाषा जानना चाहता था। तो देखो कई बार जो है ना, गुरु बन के सीखना पड़ता है, कई बार शिष्य बन के। यहां राजा गुरु बनकर के नहीं, शिष्य बनकर नहीं, गुरु बनकर सीखे कि मूर्ख किसे कहते हैं। यहां पर भी यमाचार्य ने विचार किया कि अभी जाता हूं तो ठीक नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का वार्तालाप चल रहा और बातचीत चलने लग जाए तो पता नहीं कितने समय जाते हैं। घड़ी देख रहे बार बार, बहुत देर हो गई। यमाचार्य ने सोचा तब तक जरा मंदिर की परिक्रमा कर लें टाइम पास के लिए। जैसे ही यमाचार्य परिक्रमा के लिए निकले तो घूमते घूमते उनकी दृष्टि ऊपर आले पर पड़ गई। वहां पर एक तोता था, तोता मैना इसको बोलते। जैसे उसको देखे, देखकर यमाचार्य जोर से हंस पड़े। यमराज यदि हंस पड़े तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप ही सोचो। बेचारा डर गया हो तो, अब मरा तब मरा। इधर आगे बढ़े, इतने में गरुड़ महाराज मिल गए। पूछे कि भाई देखो अभी वार्तालाप समाप्त हुआ कि नहीं भगवान विष्णु शिव का? बोल अभी तो चल ही रहा है। इधर पूछे कि आप जोर से हंस क्यों रहे? बोले ऐसे ही हंस दिया, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें बताए नहीं। जब गरुड़ महाराज आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि दोनों पक्षी एकदम डरे डरे से हैं। गरुड़ जी ने कहा भाई तुम लोग क्यों डर रहे, इतना क्यों कहां पर है? तोता मैना ने कहा कि अभी अभी यमराज हमें देखकर जोर से ठहाका मारकर हंस रहे थे, अभी हंसे मतलब हमारी मौत आ गई, तो मौत से कौन नहीं डरता। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान शंकर के मंदिर में यमाचार की मजाल कैसे, जो तुम्हें जो है वो जो है मार सके? बोले नहीं, हमें भय लग रहा है उनके हंसी से। गरुड़ ने कहा अच्छा देखो, मैं पक्षी राज हूं ना, हमारे जाति बिरादरी को है, अभी जाकर पूछता हूं क्यों हंसे हुए। लौटे पूछे कि महाराज आपने तोता मैना को देखकर जोर से ठहाका मारकर क्यों हंसा? यमाचार्य ने कहा कि देखो गरुड़ जी, उसके माथे पर लिखा था कि आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन इन तोता मैना दोनों की हिमालय पर रहने वाली बिल्ली के ये दोनों आहार बन जाएंगे, भोजन बनेंगे। कहां हिमालय, कहां जो है ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां से बिल्ली भी चलकर यहां पहुंच नहीं पाएगी और ये भी उड़ना चाहे तो उड़कर जा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के बुद्धि में सखी आ गई, ऐसा सोचकर मुझे हंसी आ गई। क्या लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि मौत होगी? बोले अच्छा, ऐसा सोचकर मैं हंसने लगा। गरुड़ जी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्हें बताया। फिर सोचे कि ऐसा है, कोई उपाय करना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, देखो मैं ऐसी कंदरा में छिपा दूंगा ना, जहां कभी भी कोई जीव आ ही नहीं सकता, फिर देखता हूं कैसे तुम्हारी मौत होती। दोनों को बैठाए और पीठ पर बैठा कर उड़े, तो बहुत दूर जाकर हिमालय से भी दूर चले गए और जाकर ऐसी कंदरा जहां अंधेरा अंधेरा, दोनों को रख दी और बोले कि मैं समाचार लिया करूंगा। ये ब्रह्मा की जो लेख है ना कि आज के दिन तुम्हारी मौत होगी, बिल्ली खाएगी या कोई जीव नहीं आने वाला। वापस आ गए, इधर जो है जब वापस आ गए और आकर जरा व्यंग किया यमराज को, या बोल रहे थे ना आज के दिन एक बिल्ली के दोनों आहार बनेंगे, मैं देखता हूं कैसे आहार बनते हैं, पक्षी राज में पक्षियों को बचाने वाला हूं। यमराज ने कहां रखे भाई, बोले हिमालय से और उत्तर उन्हें ले गया और एक बड़ी भयंकर गुफा थी, उस गुफा में दोनों को छोड़ आया। यमराज जोर से हंस पड़े, तब तो आपने विधि के विधान को सत्य कर दिया। बोले कैसे, मैं तो सुरक्षित रखकर आया हूं, वहां कोई जीव जंतु जा ही नहीं सकता, इतना बर्फ, इतना ठंडा, इतना अंधेरा है। बोले कुछ कंदरा में एक बिल्ली होगी, जाकर देखो अपनी आहार बना ली होगी। सचमुच में गए तो देख रहे दोनों जय जय सीताराम। तो देखो ये जो मौत है ना, मौत मौत से सभी घबराते हैं। जिस मौत से ज्ञानी अज्ञानी दोनों डरते हैं, उसी मौत के आचार्य जिनका नाम यमाचार्य है, यमाचार्य से ब्रह्म विद्या की प्रार्थना नचिकेता कर रहे। और नचिकेता कौन है, यहां सब नचिकेता ही बैठे हैं। नचिकेता का मतलब जानते हैं ना, हाँ वो तो जो है कहीं भी किसी भी जगह आप लोग ऐसा अर्थ कर लेंगे, पर यहां करना ठीक नहीं। प्रेमपुरी में आप बैठे हैं ना, यहां शुद्ध सटीक गोली लगनी चाहिए है ना मधुसूदन भाई, सटीक गोली। देखो न ची केता है ना, न अलग कर दो, ची अलग कर दो, केता अलग कर दो। न चिया चैने धातु है, न चिनोति केतना दिकम इति नचिकेता। चयन बोलते चुनने को, जैसे फूल को चुनकर बनाते हैं माला, तो जो जो है केतन बोलते हैं गृह को, गृहादि का जो चयन नहीं करता, वरण नहीं करता, उसको नचिकेता कहते। जिस प्रकार आप दीपावली के दीप बाजार में जाते हैं और जाकर खूब चुनते हैं ना, कौन सा सामान लेना, कैसा सामान लेना, बढ़िया से बढ़िया लेना, और सबसे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का सामान लेते हैं, उसको बोलते चुनना, चयन करना। संस्कृत में उसको बोलते चयन, आप लोग चुनना बोलते ना। तो जिस प्रकार बाजार में आप बढ़िया से बढ़िया चीज को चुन लेते हैं, ऐसे ही जो संसार के पदार्थों को नहीं चुनता है, नहीं संग्रह करता है, उसका नाम नचिकेता। तो संसार में दो ही चीज है, आत्मा अनात्मा। अनात्मा में ही पूरा संसार आ जाएगा, चाहे घर द्वार हो, धन हो, बंधु बांधव, सोना चांदी, ये सब अनात्म कोटि में है। दूसरी कोटि में आत्मा है। अब आत्मा में भी क्या है आपका, आत्मा में सत्संग है, स्वाध्याय है, भजन ध्यान जप, ये सब आत्म कोटि में है। आत्मा को प्राप्त कराने वाले जो साधन हैं, उनको आत्मा कोटि में रखते हैं और अनात्मा को प्राप्त कराने वाले साधन को अनात्मा सबसे कहते हैं। जिस प्रकार उपनिषद की भाषा में आंख को ज्ञान सबसे कहते हैं, अलग ज्ञान अलग, आंख अलग है, क्योंकि आंख नाक कान एक ज्ञानोपलब्धि के साधन है, इसलिए ज्ञान शब्द से आंख शब्द को कहा। वेद में घृत को अमृत कहा, आयुर्वेद घृतम अमृतम वै घृतम, ऐसा कहा ना, तो क्यों कहा ऐसा, क्योंकि अमृत जो ब्रह्म है ना, उसको प्राप्त कराने का घृत साधन है। घृत के द्वारा सारे यज्ञ याग संपन्न होते हैं, तो यज्ञ के द्वारा वही घृत अमृत को, ब्रह्म को प्राप्त कराने का साधन होने से अमृत सबसे घृत को कहा। और जो पहलवान है ना, उसके लिए आयु कहा। घृत जरा पिएंगे तो आयु लंबी होगी, चाय पीने से नहीं होने वाली चाय से नहीं होगी, इसलिए आयुर्वय घृतम कहा, अमृतम वे घृतम कहा। ऐसे ही अनात्मा को प्राप्त कराने के साधन है। कौन से साधन है? ये जितने भी प्रपंच हैं, इसीलिए अनात्म कोटि में रखा सबको एक शब्द से। दूसरी तरफ आत्मा है, तो आत्मा को पाने के जो साधन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, उपासना है, इनको आत्म कोटि में रखा। तो जब आप संसार के बाजार में उतरते हैं ना, तो दोनों हैं, आत्म कोटि के पदार्थ भी है, सत्संग स्वाध्याय मंदिर दर्शन करना, बड़े बूढ़े को प्रणाम करना भी आत्म कोटि में है। अभी आप लोगों ने सुना ना, परम पूज्य मराश्री के कैसेट में बड़ा सुंदर श्लोक था आत्म कोटि का, कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तश्चत्वारी वर्धन्ते आयुर विद्या शोबलम। ठीक 7:30 बजे आप सुन रहे थे अभी अंतिम प्रवचन में, परम पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जिसके जीवन में अभिवादन है, और अभिवादन एक दिन नहीं नित्य है, जिस प्रकार भगवान राम प्रातः काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नवावहि माथा, ये हमारे राम की संस्कृति है। और रावण की संस्कृति क्या पता है? कि ब्राह्मण को भी पशु बना देना। मारीच मामा थे रिश्ते में, और ब्राह्मण थे और तपस्या कर रहे थे, तीनों तपस्वी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, रिश्ते मामा लगते हैं रावण के। परंतु रावण क्या कहता, देखो मारीच, अभी तक तो मैं बड़े प्रेम से समझाया आपको, मामा के रिश्ता से, तपस्वी के रिश्ता से नहीं मान रहे, उल्टे मुझे उपदेश दे रहे हो, ये काम निंदित है। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं रावण हूं राजा, तुम्हें जो है मृग बनना है या मरना है, सीधी बात, तलवार निकाल लिया। अभी तो मैं अपने मुकुट को चरणों में रख के बोल रहा था कि आप एक बार सोने का मृग बन जाओ ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं, पर तुमने हमारी अवहेलना किया, हमारी आज्ञा है या मरो या मृग बनो, दो में से कोई एक चुन लो। मारीच ने सोचा दुष्ट के हाथ मरने से बढ़िया है भगवान राम का दर्शन करते करते मरूं। तो देखो रावण की संस्कृति है कि ब्राह्मण को भी पशु बना दिया, मृग बना दिया, और बनाए मरवा भी दिया। और भगवान राम की संस्कृति देखो, पशु को भी भगवान बना दिए, ऋक्षराज जामवान हनुमान जी, बानर योनि मृग, मृग योनि में बानर आता है। आप अमर कोश पढ़ेंगे तो अमर कोश में मृग वर्ग है, मृग कांड में बंदर ऋक्ष का संज्ञा नाम लिया है। तो देखो मृग योनि से हनुमान जी को भगवत्ता प्राप्त करा दिया, आज भी हनुमान जी महाराज की पूजा करते भगवान मान करके। तो राम की संस्कृति क्या है? प्रातः काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, वाल्मीकि रामायण में बात आती है, दशरथ जी महाराज की 367 और भी पत्नियां थीं। तीन तो थी, सभी जानते हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कई कई माता, तीन तो प्रसिद्ध हैं, परंतु 367 इसके अतिरिक्त भी रानियां थीं।